ईशाया दसवां बाब। अफसोस उन पर जो जुल्म के आइन मुकरर करते हैं और जो रोबदारी की तहरीर लिखते हैं ताकि मिस्कीनों के इंसाफ को बिगाड़ें और मेरी उम्मत के मोहताजों के हक को लूट लें ताकि बेवाएं उनकी गनीमत हों और वो यतीमों को लूटें। पास तुम मुतालबे के और दूर से आने वाली हलाकत के दिन में क्या करोगे और मदद के लिए किसके पास जाओगे और अपनी सरवत कहाँ छोड़ोगे। पास फक ये के असीरों में जलील होगे या मकतूलों के दरमियान गिरोगे, इस सब के बावजूद उसका गजब ठंडा ना होगा और उसका हाथ बढ़ाया हुआ ही रहेगा।
अश्शूर की सजा। अश्शूर पर अफसोस, वो मेरे गजब की छड़ी और लाठी है और ये उनके हाथ में है। मैं उसे एक बेदीन कौम पर भेजता हूं और उस उम्मत के खिलाफ हुक्म देता हूं जिस पर मेरा कहर है कि लूट को लूटे और शिकार को शिकार करे और कूचों के कीचड़ की तरह उन्हें लताड़े। लेकिन वो इस तरह से नहीं देखता और ना ये कि उसके दिल का ख्याल है, बल्कि उसके दिल में ये है कि बेशुमार कौमों को हलाक करे और काट डाले, क्योंकि वो कहता है कि क्या मेरे उमरा सबके सब बादशाह नहीं, क्या कलनूकर कमेश की तरह नहीं और हमात अरफत की तरह, क्या सामरा दमिश्क की मिसल नहीं, जिस तरह मेरा हाथ इन मुमलकतों पर गालिब आया और उनके असनाम यरूशलेम के असनाम से फाइक नहीं, और जैसा मैंने सामरा और उसके बुतों से किया, क्या वैसा ही यरूशलेम और उसके बुतों के साथ ना करूंगा। और जब खुदावंद अपने तमाम काम कोहे सहून और यरूशलेम में ख़त्म करेगा तो वो शाहे अश्शूर के मुतकब्बिर दिल के फल की और उसकी बुलंद नजरी के फख्र की सजा देगा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपने हाथ की कुव्वत और अपनी हिकमत से काम किया, क्योंकि मैं अक्लमंद हूं। मैंने कौमों की सरहदों को सरकाया और उनके खजाने लूटे और मैंने तख्तों पर बैठने वालों को नीचे उतार दिया, जिस तरह कोई बहादुर मर्द करता है, और मेरे हाथ ने कौमों की सरवत को घोंसले की तरह पाया और जिस तरह कोई पड़े हुए अंडों को जमा करे। मैंने सारी की सारी जमीन को जमा किया और किसी ने पर ना हिलाया या चूंच खोली या चहचहाया। क्या कुल्हाड़ा उसी पर जो उसी से काट रहा है फख्र करेगा, या आरा उसके खिलाफ जो उसे हरकत देता है तकब्बुर करेगा। छड़ी अपने उठाने वाले को क्यों कर हिलाएगी, जो लकड़ी नहीं है उसे लाठी क्यों कर उठाएगी। इसलिए खुदावंद रब्बुल अफवाज उसके मोटों पर लागरी भेजेगा और उसकी शौकत की बजाय आग की सोजश की तरह एक सोजश भड़काई जाएगी, और इसराइल का नूर आग और उसका कद्दूस शोला बन जाएगा, तो ये उसके कांटों और खारदार झाड़ियों को एक ही दिन में जलाएगा और भस्म करेगा, और उसके जंगल और उसके जरखेज खेत की जानो जिस्म की शौकत फना होगी, जिस तरह मरीज गश खाता है। और जंगल के दरख्त जो बाकी रहेंगे और वो ऐसे थोड़े होंगे कि उन्हें एक लड़का भी गिनकर लिख ले।
इसराइल का बकिया। اور اس روز اسرائیل کا بقیہ اور یعقوب کے گھرانے سے جو بچ رہیں گے وہ اس پر جو انہیں مارا کرتا تھا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ وہ دل کی سچائی سے اسرائیل کے قدوس یعنی خداوند پر تکیہ کریں گے۔ اور بقیہ، ہاں یعقوب کا بقیہ، خدائے قادر کی طرف رجوع لائے گا، کیونکہ اے اسرائیل، اگرچہ تیری امت ساحل کی ریت کی مانند ہو تو بھی اس میں سے فقط بقیہ رجوع لائے گا، کیونکہ ایک ایسی بربادی ٹھہرائی گئی جو انصاف سے لبریز ہے، کیونکہ خداوند رب الافواج تمام روئے زمین پر مقررہ بربادی عمل میں لائے گا۔ اس لیے خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے میری امت جو سیہون میں رہتی ہے، اشور سے نہ ڈر، اگرچہ وہ تجھے چھڑی سے مارے اور تجھ پر اپنی لاٹھی اٹھائے، اس طریق پر جیسا اس نے مصر میں کیا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں غصہ موقوف ہوگا اور میرا غضب انہی کی ہلاکت کا باعث ہوگا، اور رب الافواج اس پر ایک تازیانہ برپا کرے گا، جس طرح کہ اوریب کی چٹان کے قریب مدیان مارا گیا، اور جس طرح کہ اس کا عصا سمندر پر تھا اور وہ اسے مصر کی راہ میں لے جائے گا، اور اس روز اس کا بوجھ تیرے کندھے سے اور اس کا جوا تیری گردن سے ہٹا لیا جائے گا، اور فربہی کے سبب سے جوا معدوم کیا جائے گا۔
سنہیرب کی یورش۔ وہ ایت میں پہنچے گا، وہ مجرون میں سے گزرے گا، وہ مکماش میں اپنا اسباب رکھے گا، وہ جائے گزر سے عبور کرے گا یوں کہہ کر کہ ہم جابا میں رات کاٹیں گے۔ راما حیران و ہراساں ہوا، جبائے شاول بھاگ نکلا ہے، اے جلیم کی بیٹی اپنی آواز بلند کر، اے لیشا کان لگا، اے اناتوت جواب دے۔ مدمینہ کوچ کر گیا، جابیم کے باشندے بھاگ گئے، وہ آج کے دن نوب میں ٹھہرے گا، وہ سیہون کی بیٹی کے پہاڑ پر یعنی یروشلم کی پہاڑی پر اپنا ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن دیکھ، خداوند رب الافواج شاخوں کو سختی سے توڑ ڈالے گا، پس ہر ایک اونچے قد والا کاٹا جائے گا، اور ہر ایک جو بلند ہے پست کیا جائے گا، اور جنگل کی جھاڑیاں لوہے سے کاٹی جائیں گی، اور قادر ہاتھ سے لبنان گر جائے گا۔